पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
रभोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रभोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया, अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे घोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे घोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब पहले तो बहुत बुरा हाल था, अब इतना करण लग गया कि जैसे एक गुड़गांव में वाड़ी पे जाते थे बाल उतरवाने के लिए, नवजात शिशु लिबेटा होता है बेटी, और वहां जाते थे पहले प्रथम बाल वहां टडा का करते दुर्गा माता के, गुड़गामे वाली माता के, और वहां क्या करती बुढ़िया ले जाती अपनी पुत्र वधु ने और उस पोते ने छोटे से ने, और जाकर वहां कहती नाई होते थे वहां पर बाल काटने वाले, और उस नाई को कहती ले रे नाई के बाल काट दे माता का चढ़ाऊंगी। अब वो करता कैची कच 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 दूर पहनता पहले इतनी लंबी लंबी वारती पहले तो कैची भी और डालगी। अब बुढ़िया क्या कहती रे भाई नाई के देख मेरे पोते का कच्चा सिर है, कच्चा सिर है कैची ना लग जाए इसके, ध्यान तेरे कती ध्यान तो देख देख। अब परमात्मा कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे नौके देख के चीना लग जाइया, और एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटैया, रे बोड़ी सी दुनिया। अपने बच्चे का तो इतना प्रेम अपने में इतना ममता के कैंची का भी डर, अरे एक बकरी के बच्चे का गला कटवा कर लोग माता का चढ़ा दिया, माता बकरे खाया कर रखते। ये जाड़ के स्वादियों ने दुष्टों ने अपने स्वार्थ वसी बकवास चलाई थी। भक्ति में थी कोई ना बोड़ी आत्मा होया करती श्रद्धालु, उनको किसी तरह बहका देते भगवान से डर के, अपने परिवार में खैर सुख के लिए पाप और करने लगे। एक भगत ने चुटकला सुनाया, ने बोला एक ये गुड़गांव वाली माता का सरकारी ठेका देन लगी, सरकार के अंतर्गत आ गया वो, और सरकार जैसे उसको दे दी वह 2 लाख रुपये सरकार को जमा करा दिए, बाकी ज्यादा हो तेरा कितना भी यहां पूजा पाठ का पैसा आवे। उसने ले लिया 2.5 लाख का, और लास्ट दिन था, उन्हें साफ साफ आ दिया कि तो 100-200 आदमी और आ सकते हैं, इव और कोई चढ़ावा आवे कोई नहीं पूजा का सामान। उसने एस्टिमेट ला लिया 50,000 का टोटा हो गया, 50,000 की आनी होगी, उस ठेकेदार ने अपना एस्टिमेट ला रखा था। इतने में एक बुढ़िया आ गई, वो बुढ़िया ने बोला मा ताई के करण आई तू, वह बुढ़िया बोली बोला भाई मेरे पोते की कांच लकड़ा है और माता तो ठीक करण आई हूं। उन्हें बोला माई या तो कांच काट है ठीक ना करती, तो उन्हें बोली रे ढेड नो क्यों कर बोला 50,000 में मेरी काट रखी इसने, 50,000 का टोटा हो गया मेरा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे और देखें चीना लग दिया, और एक बकरी का बच्चा लेके और उसका गला कटैया रहे बोली सी दुनिया। ऐसे जुल्म करो और फिर घर में खैर चाहो। अब ये सारे कारण ही अज्ञानी संतों ऋषियों महर्षियों के थे जिन्होंने हमारे पूर्वजों को मिसगाइड कर दिया। वो भगवान से डरने वाले थे, पूर्ण रूपेण परमात्मा पर समर्पित थे, और इन दुष्ट लोगों ने उनको गुमराह करके कहां जाल छोड़ा। अब कैसी पूजाएं बना दी, एक ओई माता का व्रत आया करे, ओई ओई कम ओई बोले हैं। कबीर परमात्मा कहा करते, अप लिप अप पुत अप बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया पुत्र मांगे तेरी अकल कड़े ते खोई। एक ओई माता बना करते नो चित्र सा बना लेते, अब तो बनी बनाई कागज की आ गई, उसको छाप देते द्वार पे, और उसका आगे बैठ के कहे मेरे दूध में और पुत्ता में खैर राखिए। कहते हैं पत्थर पूजे जाटी पूजे सिर तुलसा कह हो, मेरे दूध पुत में खैर राखिए न्यो पूजू हूं तो। अब क्या कहते हैं कि किता तो जाटी पूजे है और किता तो पत्थर पूजे, और किता फिर तुलसी माता ने पूजा, और तुलसी ने उसने माता बना रही शेर तुलसा के हो, अरे उन नन्नो कह मेरे दूध पूत में खैर राखिए नो पूजू हूं तो। बताइए पूजाएं थी हमारी, जाटी ने पूजे या तुलसी पौधा, ये देख जड़ी है और इसने माता बना रही और इसको अगर माथा टेके तो हमारी खैर राखिए। परमात्मा कहते हो थारी तुलसी माता ने बकरा खा गया, उसने अपना बचाव नहीं किया, तुम्हारा क्या करेगी वो। फिर क्या बताते हैं, कच्चा पाका भोजन बना के माता पूजने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मुत वो क्यों ना मर गईया रे भोड़ी सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब भी ये रिवाज बहुत जोरों पर है, लेकिन महाराज पीछा छूट गया, 15-20 साल हो गए, मालिक की दया होगी, नियम भी उसी कैटेगरी में थे। अब क्या करा करती हमारी दादी, रोटी बनाती कच्चे पाके पूड़े और तेल में सरसों के तेल में, और माता के भोग लगाने चलते, और माता की है चार ईंट ला रखी, चबूतरा बना रखा इतना ऊंचा, उसका महल बना रखा, वो चार ईंट नौ लाख ऊपर, और वहां लाइन लगी रहती, कोई जा रही है कोई आ रही है, और वहां 10-20 कुत्ते चार खड़े रहते। वह बुढ़िया तो उड़ा पूड़े गेर के नीचे उतरा को नहीं, इतने में वह चढ़ जा कुत्ते और लड़े और खाओ एक दूसरे को, वह माथा का तो नंबर नहीं आने दे, इतने वह खा ले, और फिर उससे के ऊपर मूचकाओ चलते समय। अब परमात्मा कहते हैं, अब रोटी जो पूजा के लिए जो भोजन बनाते थे वो भी किसाए बने जा कच्चा पाका, उन्हें बेरा था कुत्ते ने खाना है, जल्दी कोई देर कर देती ना काकी ताई मेरी दादी ने कहा जल्दी बना दे नुवार हो से, अब बना दे जिसा बनाए है वो जिसा उठा फटाफट ले जाती, पता था कुत्ते ने खाना है वहां पर कोई मानस थोड़े खा सके उसने। तो कहने का भाव यह कि इन पूजाओं से अपने घर में खैर सताते थे, ऐसी साधना करके हम कुशल के भी इंतजार करते थे, हमारे ऊपर ऐसे कैर डवा दिए नालायक संतों ऋषियों ने गुरुओं ने। फिर क्या बताते हैं, जीवित बाप गे लठम लठा और मुए गंग पोचैया, जब आवे आसोज का महीना फिर वो कौआ बाप बनैया रे भोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब कहते हैं जब पिताजी जीवित हैं तब तो परवाह नहीं, उनके साथ अच्छा व्यवहार सलूक नहीं करते, और मरे पाछे नो कह इसने गंगा में पहुंचा काओ, इसकी गति कराओ, उन आड्डा ने ठाके फिर गंगा में जा। गंगा पर, और वहां गंगा घाट पर वो बैठे नकली गुरु, एक व्यक्ति की पत्नी ने नाम ले रखा था यहां से, उस बेटी के तो बात सारी समझ में आई, क्योंकि यहां आएंगे ज्ञान सुनेंगे तो ये तो कोई आजकल ऐसा बालक तो नहीं है, ज्ञान से पता तो लग ही जाता है। तो उस बहन का तो पक्का विश्वास हो गया, उसके पति देव का विश्वास ना हुआ था और वो मना भी करती थी कि सर आज ये जो फूल उठा कर ले जाते हैं गंगा में डाल कर आते हैं, बोले कोई लाभ नहीं, और इसकी सारी कथा भी सुनाया करती, वाह कैसे होता है ऐसे होता है, वो ना मान्या करता, बोला नहीं तो बकवास कर रहा है और लोक लाज है या तो करना तो पड़ेगा, वो इसीलिए नाम ना ले हुआ था ना, फिर मेरा बना लिया जा नाम बाबू मरेगा इसकी तो फिर मैं फूल लेकर जाऊंगा दुनिया के कवेगी। एक दिन वो कह रही थी कि पड़ोस में उसका ताऊ मर गया और वो फूल लेकर के उनके साथ वहां पहुंच गया गंगा घाट पे, और वहां जाते ही यूं पूछेंगे कहां से आया है कहां से आया है, वो पंडित लोग जो गति कराने वाले गुरु, तो हमने बताया वहां से आए हैं, तो दूसरा भाग गया कि आज तुम हमारे हो हमारे हो, युवा क्षेत्र हमारे हमारे हैं वहां के लोग, वो आ गया हम उसके पास चले गए, उसने पूरी वही काट ली वापिस ली और देख के पक्ष है नो बोला जजमान इकद गणे दिन आए तुम, वो उसका पति बताओ था अगर अपनी पत्नी ना कहे कि नो बोला मेरे धक देसी हुई अके दुश्मन था हमारी खैर मनाओ हमारा रोज मरे, नो कह तुम तो गणे दिन आए जजमान ये क्रिया कराने। उस दिन के बाद नो बोला मेरा पक्की जचगी और नाम ले लिया और छोड़ दी सारी बकवाद, बताइए के गति करा वो तो शुक्र बनाओ कि इनका रोज मरे और यहां जल्दी जल्दी आवे। अब क्या बताते हैं जीवित बाप के लठम लठा, अपनात्माओं परमात्मा कहते हैं घट में शोक सिलसिला ये सूतक दिन राती, जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। होय होय कहते हैं जो भक्ति नहीं करते परमात्मा की सत साधना नहीं करते, संसार शोक सराय में ये सूतक दिन राती, जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। पुणात्माओं ये ऐसी गहन ज्ञान है, ऐसा गहन वचन है परमात्मा के, ये बिल्कुल सटीक है, लेकिन हम इनसे कोसों दूर थे इसलिए हम उस समाज व्यवहार में भी रहते हुए भी अपनी क्रियाओं को ठीक नहीं कर सकते थे। एक व्यक्ति के चार पुत्र थे, किसान था पहले, उसके पास चार पांच एकड़ जमीन थी, फिर उसने सारे जीवन में मेहनत कर मजदूरी कर पशु से भी ज्यादा मेहनत करके और उसने 20 एकड़ जमीन बना दी, 16 किले और मोल ले दिए बड़का के लिए। अब जो काम करने का था मनुष्य से वो तक रहा कोई नहीं, चारों बच्चे का ब्याह कर दिया, अब बच्चे अलग अलग हो गए, बुढ़े को अधरंग मार गया पैरालिसिस हो गया। अब पहले सर्वासर में पहले बड़े बेटे ने संभाला, एक महीने के बाद उसकी पत्नी ने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस का कोई ना तेरे बाबू ने तू संभाल। अब उस पर भी ना बनी को सेवा तो वो दुखी होने लग गया, समय पर नवाना नहीं खाना खिला नहीं पाते, काम धंधे में लगे रहते, तो धीरे धीरे पता चला तो दूसरा कहने लगा भाई और दो चार गांव के इकट्ठे हुए भाई तू कर ले कुछ दिन, तुम नो कर लो महीना महीना कर लो चारों जने इस बुढ़े की सेवा, ऐसे शुरुआत होगी। अब वो महीने भी ना हो उसकी सेवा, वो महीने भी ना हो, वो एक महीना दूसरे कर छोड़ जरूर दें लेकिन संभाले नहीं, माए टट्टी पे साहब माए सड़े जा। वो आखिर में क्या किया कि रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, अब उन्होंने कहा भी तुम नो करो तुम्हारी इतने जमीन है, चार चार जने चार चौक 16 और चार बुढ़े का बांटा हुए हैं, जो इसके बांटे चार किले हैं वो ले लो और इसकी सेवा कर लो, कौन सा करेगा। तो छोटे वाले की पत्नी बोली हम कर देंगे, वो लालच में अब उसने रख लिया, एक महीने 20 दिन तो उसकी करी सेवा, फिर हुआ भी नो बोली किले भी ले लो और बुढ़ा भी ले लो, हमने जरूरत कोई ना। पंचायत हुई और पंचायत ने नो सोचा भी इन जितने भी इसके चार किले आवन है बांटे में इसको ठेके पर देकर और नौकर छोड़ जाएंगे। ऐसा विचार कर रहे और बुढ़ा पड़ा वहां पर चार पाई में बंगा मुंह हो गया और पोता आ गया छोटे वाला उसने नो कहा बोला जा नहीं अब बेटे ने कर दिए गए रे और पोते काटेंगे टाट तेरी। यानी अब बेटा ने तो एक एक पल भारी हो रहा बाप दुश्मन बन गया और पोत्या ममता गहरी। अपुनात्माओं जब तक हम भगवान के इस ज्ञान से परिचित नहीं होते हमारा जीवन पशु से बदतर है भले ही हम मनुष्य की खाल में घूम रहे होते हैं। अब परमात्मा की जब सत भक्ति भी करता रहे तर काम भी करे उस काम में बरकत भी मालिक देता और किले भी होते और भक्ति भी करता तो यह दुर्गति नहीं होती। और हो जाती तो कहते हैं मान ले कोई अटैक हो भी जाकर कोई ऐसी भारा क्रम हो लेकिन फिर हल्का होकर टल जाओगा ऐसी दुर्गति नहीं होती। छह सेवादार रहे उसके ऊपर परमात्मा पहले तो या होने कौन दे और फिर भी अपनी भक्ति में कोई हीनता आ जाती है या कोई संस्कार मालिक ने चेंज करने होते हैं तो फिर वो बुढ़ापा भी बहुत अच्छी तरह कटेगा उसका। परमात्मा भगत की बहुत कोई व्यवस्था करे वो इसी कर देगा कि उसको याद भी नहीं रहेगी तो वर्द है या कैसे है। अब भक्ति करने से एक उदाहरण बताते हैं कि एक त्रिलोचन नाम का भगत था और परमात्मा की भक्ति करता था आदिनी से रहता था और उसका फिर एक सेवक था एक सेवक रखा हुआ था उसने नौकर। और क्या हुआ कि वो नौकर को जाना पड़ गया किसी काम बस वो दूर दूसरे स्टेट का था उसने कहा कि महाराज जी मैंने जाना पड़ेगा ऐसे ऐसे घर में कोई घटना घट गई पत्र आया है। वो त्रिलोचन भगत बोला कि जा बेटा कोई बात नहीं वो चला गया। वो तो गया होगा बनमाने 20-30 किलोमीटर पैदल चला करते उधर से उसका दस्त लाग गए भगत के वृद्ध हो रहा था 80-85 साल का और बहुत दुखी हो गया। अब वो परमात्मा आगे उसका रूप बना के अपने उसके नौकर का और वापस आगे एकदम वो भगत बोला अरे सेवादार तू क्यों कर आ गया वापस कैसे आ गया। वो कहने लगा जी मैं फिर जाऊंगा और मेरे पता नहीं के मनवाई मैं वापस आ गया मैंने सोचा कल जाऊंगा आज तो लेट हो जाऊंगा ऐसे ऐसे तो अब मैं ना जाऊं आप तो बीमार बहुत हो आप ठीक हो लोगे ना स्वस्थ हो लोगे तब जाऊंगा। एक महीने तक वो परमात्मा सेवक का रूप बनाकर उसकी टट्टी ठावे वही चारपाई के पास बैठ कर वो टट्टी करे और उसको उठा के बाहर फेंका उसके उसका हाथ धोए उसको नुआवे धोआवे कपड़े धोए रोटी पोवे और पैर तक खवावे। अब एक महीने के बाद वो नौकर आ गया वो नौकर तो आया मान ले गांव में प्रवेश किया और परमात्मा खिसक गए। अब वो नौकर ले रहा सामान गरते जो भी उनके क्षेत्र में जो चीज होया करती कोई मतीरा ले रहा कोई सेब ले रहा है और चूरमा बनवा के ला रहा सफर में और आके वहां रख के और प्रणाम करी कहने लगे महाराज 20 दिन की कह गया था महीना लाग गया मैंने माफ करियो आप ठीक हो। उसके मुंह की तरफ देखे त्रिलोचन भगत ये क्या कह रहा है क्या क्या बोल रहे हो भगत आप मैं ये कह रहा हूं जी मेरे घर वालों ने आपको प्रणाम बोला है और आपको बहुत याद करते हैं सब परिवार वाले कुशल हैं और ऐसे ऐसे आपके लिए सामान भेजा है लो आपकी पूजा भेजी है। अरे तू क्या क्या कह रहा है कौन कहां से आया है क्या बात है ऐसे ऐसे मैं घर नहीं गया था तू घर गया था अकान जी आप घर गए मैं घर तो सचमुच अब सीधा अपने घर से आ रहा है कहां अपने घर से आ रहा हूं ये सारा सामान लाया हुए। तब उसकी आंखों में पानी आ गया 80 साल के बूढ़े गए रोने लग गया बोला परमात्मा इस पापी के ऊपर इतना भार चढ़ा दिया आपने आकर के मेरे स्टट्टी तक उठा दी मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार कर गया। तो पुण्यात्माओं ये सत्कर मानना, ये कथाएं नहीं है, ये बिल्कुल 100% सत कहानी है, सत कथाएं हैं, केवल दंत कथा नहीं है। तो परमात्मा ऐसे सुख देता है, लेकिन कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। परमात्मा ऐसे लाभ देता है, लेकिन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे उससे ये बेनिफिट, तो आपकी कोई सेवा शुश्रूषा में कमी रह रही है, आपकी कोई भक्ति में, कोई श्रद्धा में, आपके अंदर आस्था में या तरुटी है। जिस दिन यह निकल जाएगी, उस दिन देखना नए नए चमत्कार आपको आगे दे पाओगे। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाही, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अब परमात्मा कहते हैं जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की शरण में चले जाते, ना तो श्राद्ध निकालने की जरूरत है, ना पिंड भरवान की आवश्यकता, और ना क्योंकि वो भूत नहीं बने, हमारे जो भक्ति कर रहे हैं वो भूत प्रेत पितर की योनि में नहीं जाएंगे। और पुण्यात्मा, और यदि आपके पितर, आपके माता पिता, क्योंकि वो तो अंडरस्टूड है, जो भक्ति नहीं कर गए किसी ना किसी योनि में कष्ट उठा ही रहे हैं, कहीं भूत बने होंगे कि तो पशु पक्षी की योनि में होंगे। अब आपकी सच्ची श्रद्धा स्वाभाविक है कि आपकी आस्था भी जावेगी उनके प्रति के भगवान मेरे माता पिता की तो बहुत बुंडी दुर्गति हुई होगी, तो उसके लिए भी समाधान परमात्मा बताते हैं। आपके उन पितरों तक का छुटकारा आपकी भक्ति से हो जाएगा, और ऐसे हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, जिसका ये इतनी बेनिफिशियल है। कहते हैं भक्ति बीज होवे जो हंसा, और तारों तास के कुत्र बंसा। आने वाली 101 पीढ़ी तो पार होए होगी, और जो पितर और योनियों में दुख पा रहे हैं उनको उनका भी छुटकारा हो जाएगा, उसकी भी विधि बताई जाती है। तो पुण्यात्माओं, अब क्या बताते हैं, प्रेत चला पैजा विराजे पितरों पिंड भराई, बौर शराध खान को आए फिर काग बहे कलमाई, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। कहते जय सतगुरु की संगत करते ये सभी झंझट मिट जाते, सारे पाप नाश हो जाते और सतलोक में चले जाते, अमर लोक में जहां परम शांति प्राप्त होती है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। या उसी को याद दिला रहे हैं गरीबदास साहिब जी, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी सनातन परम धाम पर तुम्हारा स्थान होता, आसन होते, वहां निवास होता, जहां धूप ना छाई, जहां पर कोई कष्ट नहीं है। सुरत निरत मन पवन पियाना शब्द शब्द समाई, गरीबदास गलतान महल में मिले कबीर गुसाई। अब गरीबदास जी कहते हैं कि सत साधना जो करते हैं, सुमरण करते हैं, सुरत निरत मन और पवन, इन सब को एक साथ रखना है भक्ति करते समय। जैसे आप सिमरण करते हो सतनाम का, या प्रथम मंत्र का करते हो, उस पर भी ध्यान होना चाहिए कि मैं क्या मंत्र बोल रहा हूं, कौन से मंत्र का जाप कर रहा हूं, तब उसका बेनिफिट है। और वैसे आप मंत्र बोल रहे हो, मुंह से जुबान से बोल रहे हो, मन कहीं घूम रहा है, तो वो मंत्र नहीं हो रहा आपका, उसका कोई यूज नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि माला तो कर्म में फिरे हाथ में, और जीव फिरे मुखमाही, हनमनवा तो धक्के पता नहीं कहां खावे, चौदिस फिरे ये तो सुमन नाही। जो भी जैसे कहते हैं ना, सुरत शब्द अभ्यास, ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि मैं क्या बोल रहा हूं। जो अक्सर अंदर मन में सिमरण कर रहा हूं, उस पर सुरत निरत भी होनी चाहिए कि मैं के बोल रहा हूं और ये किस का मंत्र है, और कम से कम ये जरूर होना चाहिए मैं बोल के रहा हूं। इसको सुरत और शब्द अभ्यास बोलते हैं। जैसे श्वास का सेवन श्वास के द्वारा करते हैं, एक मंत्र बाहर छोड़ते हैं एक अंदर लेते हैं, तो उस पर ध्यान रहे मैं बाहर के छोड़ रहा हूं, कौन सा मंत्र छोड़ा है, उसका उच्चारण होता है अंदर से अजप्पा जाप होता है, अंदर ले तो भी उसका अजप्पा जाप होता है, तो उसके ऊपर मन रहे लगा रहे, मन रहेगा तो सुरत निरत तो अपने आप रहेंगी, सुरत निरत मन और पवन, पवन माने श्वास, इसके श्वास के ऊपर और साथ में क्या मैं बोल रहा हूं उस शब्द के ऊपर, उस उच्चारण पर ध्यान रहे अंदर से क्या जाप कर रहा हूं, तो वो आपका जाप लेखे में है। और उस जाप में ध्यान है नहीं, मैं बोल के रहा हूं, मन कहीं घूम रहा है वैसे बोल रहे हैं, पर वो जैसे मंत्र करते रहते हैं, उससे लाभ नहीं होगा। कहते सुरत नृत मन पवन पियाना शब्द शब्द समाई, गरीब दास गलतान मोए मिले कबीर गुसाई। कहते मुझे परमात्मा मिल गए, कबीर भगवान स्वयं सतगुरु रूप माँ के, और इसलिए मुझे आज मैं मस्त हूं गलतान महल में, आज मैं पूर्ण रूपे अपने आप को फरी समझ रहा हूं, क्योंकि मुझे पूर्ण साधना मिल गई, पूर्ण परमात्मा ने आंखों दिखा दिया जहां हमने जाना है, अब मेरी यहां आस्था रही नहीं, मेरा अगला कदम परमात्मा के दरबार में रखा है, जिस दिन ये शरीर छूटेगा सीधा सतलोक पहुंच जाऊंगा। गरीब दास गलतान महल में, जैसे चाचड़ जाया कर बालक कह के वहां जाना है वहां जाऊंगा, है कब आओ वो टाइम वो दिन, उस दिन वहां से भागेंगे वहां जाएंगे, तो अब तो हमने मरण की मुश्किल हो, एकदम मरना जावा और फिर वो टाइम लेना मुश्किल हो जाएगा, वो दिन का जावा परमात्मा यहां से पांडा सूटर अपने बैठा सतलोक में। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पांडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महर्षियों ने भी यहां 84 लाख योनियों में गदा बनकर कष्ट उठाए। सुखदेव नाम का एक ऋषि अपनी आप बीती बताने लगा, जब उसका अंतःकरण खुल गया साफ हो गया, कहने गया एक बार मैं गधे की योनि भोग रहा था और मैं अंधा हो गया, मेरे मालिक ने मुझे छोड़ दिया और मैं पगडंडी का आइडिया सा लेकर उसके साथ साथ चला जा रहा था। पगडंडी में 2-3 किलोमीटर जाकर के आगे एक नाला था, नाला बहुत संकीर्ण था, भीड़ा था, आम व्यक्ति तो उससे जंप करके निकल जाता था, मुझे दिखाई नहीं दिया, मैं उसके अंदर फंस गया, चारों पैर नाले के वहां फंस गए, मुंह आगे टिक गया, पीठ पीछा हट गया और कति फट हो गया उसमें, और वहां कोई इक्का दुक्का व्यक्ति जावा था, मुझे किसी ने निकाला नहीं, मेरे कमर पर पैर रखे और मेरी पुड़ी बना ली, पार हो जाऊं उस नाले पर के। अब तक 10 दिन तक मैं भुगत कर प्यासा भूखा वहां मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब वो सुखदेव ऋषि बता रहा है कि मुझे वो घटना याद रहती है और मैं भगवान के चरणों में लगा रहता हूं, मैं गफलत नहीं करता, यह मेर बनी है मेरे ऊपर, परमात्मा ने मेरा एक जीवन दिखा दिया। पुण्यात्माओं अपने विश्वास करना पड़ेगा, यह साधना करनी पड़ेगी। अब चाहे तो उन पर मेर कर दी कि मैं गधा बना था, ऐसे मुझे वो कष्ट हुए थे वो याद आ गई और परमात्मा बताने लग रहे कि ऐसा तुम्हारे साथ बनेगा, तो भगवान के वचन पर विश्वास करके और ये बात याद रखे कि ऐसा कैर टूट जाएगा जब भक्ति नहीं करी तो उसके लिए क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, खरवाने गधा, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़े वो। कहते हैं प्राणी ऐसे ऐसे महर्षियों की अदुरुक्ति हो रही, जैसे आपने महावीर जैन जी का जीवन देखा कई बार, अब समय नहीं है दिखाने का, फिर दिखाएंगे। अब 60 करोड़ बार तक गधा बना, 30 करोड़ बार कुत्ता, और पता नहीं कितने जीवन, और केवल 80 लाख बार देवता बना। परमात्मा कहते हैं जो साधनाएं तुम ये ऋषि मैं ऋषि करा करते उससे भी उनकी दुर्गति समाप्त नहीं हुई, जन्म मृत्यु का अंत नहीं हुआ, परम शांति नहीं मिली, शाश्वत स्थान नहीं मिला, और अब ये पेंडा ये मार्ग आपको बता रहे हैं, जो सत भक्ति है इसको कर और अपना पीछा छुटा ले। सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। कि हे जीवात्मा तेरी क्या बुनियाद है, अब वो साधना करते करते तुम्हारी दुर्गति हो रही है, अब ये साधना कर, ये पेड़ा पकड़, ये मार्ग ग्रहण कर जो हम बताते हैं, सतपुरुष की साधना करके अपना पीछा छुटवा ले और चलो जहां से आए हो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, हम सभी आत्माओं के जनक हैं, वो हमारे सच्चे हितैषी हैं। हम अपनी गलती से अपने परमात्मा से विमुख हो गए, फिर भी वो हमारे पिता हम बच्चों की इस गलती को अक्षमा करने के उद्देश्य से यहां आते हैं और हमें वो विशेष जानकारी देते हैं हम कौन हैं, यहां उद्देश्य क्या हमारा और हम किस स्थान पर रह रहे हैं। ये स्थान रहने लायक नहीं है, लेकिन हम दुखों को सहन करने के इतने हैबिचुअल हो गए कि हमें ये दुख दुख नहीं महसूस हो रहे। परमेश्वर आकर के, परमात्मा स्वयं आकर के हमें जानकारी देते हैं कि तुम यहां गलत स्थान पर रह रहे हो, तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ हुआ है और एक विशेष षड्यंत्र के तहत तुम्हें यहां फंसा रखा है। आप जी की बुद्धि को बहुत कमजोर बना दिया। परमेश्वर कबीर जी हमें याद दिलाते हैं, तुम जीव बन गए, तुम हंस थे, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूला ताते जीव कहाया, मेरे साधो भाई हंस रूप था जब तू आया, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। जिसमें हम इस काल के साथ यहां आए इसके लोक में, उसमें हम सभी अपनी सत्य भक्ति की कमाई से ओत प्रोत थे, हम अपनी सारी कमाई लेकर के इसके साथ बैठ आए। इस काल ने उस हमारी पुण्यों की कमाई के आधार से हमें पहले तो ऊपर के लोकों में रखा और फिर इसने इस पृथ्वी के ऊपर हमें पटकना शुरू कर दिया। ये हमारे को सजा दे रखी है। यहां हम सब अपने कर्मों का दंड भोगने के लिए इस पृथ्वी लोक पर आए हुए। परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी आकर के हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस लोक के वासी नहीं हो। इस काल ने हमें इतना अज्ञानी बना दिया, हम परमात्मा की डेफिनेशन भूल चुके हैं। जबकि हम सभी सदग्रंथों को सत्य मानते हैं, जैसे पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र चारों वेद, पवित्र 18 पुराण आदि सदग्रंथों को हम सही मानते थे और मानते हैं, और जिन ऋषि महर्षियों को हम विद्वान मानते थे वो एक संस्कृत भाषा बोलते थे, संस्कृत भाषा के जानने वाले थे, और उन्होंने जैसा भी इन सदग्रंथों को समझा उस आधार से उन्होंने लोक वेद बना करके समाज में पेश कर दिया, और उस लोक वेद के आधार से इस काल प्रेरणा से सभी ने परमात्मा की परिभाषा सदग्रंथों के विपरीत पूरे समाज को व्याख्यान कर रखी है। और परमेश्वर आते हैं तब उस सच्चे ज्ञान को प्रचारित करते हैं, तो उस समय हम सभी मानव शरीरधारी प्राणी उन नकली गुरुओं, ऋषियों, महर्षियों, मंडलेश्वरों, ब्राह्मणों के आधार से परमात्मा की परिभाषा विपरीत ग्रहण किए हुए होते हैं। और परमात्मा सच्चाई बताते हैं तो हम अपने अज्ञान के कारण परमात्मा के सत्य ज्ञान का विरोध करते हैं। जो ज्ञान आज ये दास आपके रूबरू करा रहा है, परमेश्वर कबीर देव जी ने प्रत्येक युग में इस ज्ञान को बोला और लिपिबद्ध करवाया, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, ये कबीर वाणी है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने वही ज्ञान लिपिबद्ध करवाया था, आज वो सभी सदग्रंथों में विद्यमान है। लेकिन उस समय के ये नकली ब्राह्मण, नकली गुरु, अपनात्मा, वैसे ब्राह्मण की डेफिनेशन एक बहुत ही पवित्र होती है। ब्राह्मण के विषय में परमात्मा ने बताया है कि ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने और पंडित सोए जो पिंड की जाने। आप सभी ब्राह्मण हो क्योंकि आपने परमात्मा को पहचान लिया। और वैसे जाति व्यवस्था में देखें तो भी हम ब्राह्मण की परिभाषा को नहीं समझ पाए। जब से सृष्टि प्रारंभ हुई कोई जाति अलग नहीं थी, कोई मजहब अलग नहीं था, उसी एक ही ग्रुप के व्यक्तियों ने आपस में, जैसे चार भाई हों, उन चारों में से एक को कहा कि भाई तू बच्चों को पढ़ा दिया कर, शिक्षा ग्रहण कर और करवा, एक की सेवा लगा दी कि भाई तू रक्षा कर, क्षत्रिय बन, एक को वैश्य धंधा कर और सबका पालन पोषण कर, और तीसरे को कहा भी तू अपना झाड़ू झोपा कराया कर, तो उसे हर स्वीकार कर लिया उन्होंने। ठीक है, काम तो करना ही है, सभी ने मिलके करना है। तो जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण वर्ग, फिर उनके वंशज, क्योंकि वो वही कार्य करने में दक्ष होते थे, तो अपने अपने कार्य में अपने वंशजों को लगाते चले गए। इस प्रकार ये आगे चल के चार बड़े बड़े ग्रुप हो गए। और परमात्मा के बारे में जो जानकारी देता है वो ब्राह्मण कहलाता है, उसको गुरु बोलते हैं, आचार्य होते हैं वो। और उनके ऊपर विश्वास किया जाता है कि ये इन्होंने वेदों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, ये जो कुछ बता रहे सत्य है। अब यहां जो नकली ब्राह्मणों के विषय में इस दास ने कहा है, वो ब्राह्मण जाति से नहीं संबंध है। अब जैसे मेरे गुरुदेव थे स्वामी रामदेवानंद जी, ये ब्राह्मण जाति से थे, हरियाणा प्रांत, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, तहसील चरखी दादरी और गांव बड़ा पैतावास। ये बड़े पैतावास भिवानी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, ब्राह्मण जाति से, जो परंपरागत ब्राह्मण है। जैसे पहले वैद होता था, कोई बढ़िया वैद नाड़ी देख कर दवाई देता था, उसकी एक दो पीढ़ी भी उसी प्रकार वैद का काम करते रहे, फिर उन्हीं की पीढ़ियों के आगे चल करके वो वैद नहीं रहे, अपना और धंधा कर रहे हैं, कोई नौकरी लग रहा है, कोई और काम करता है, किसी ने परचून की दुकान खोल रखी है। अब वो सभी अपने पीछे वैद लगाते हैं, अब वो वैद नहीं है, वो जानते नहीं पेट के दर्द की दवाई, और लिखते हैं वैद, एक सरनेम सा बन गया वो। ऐसे ही जो पंडित होते हैं, पंडित वो माने जाते थे जो शिक्षा ग्रहण करते थे, विशेष विषय में आचार्य बनते थे, और विद्या ग्रहण करते थे वो पंडित कहलाते थे। वो विद्या कौन सी थी? ओनली संस्कृत लैंग्वेज। और संस्कृत भाषा को जानकर फिर उनका उद्देश्य ग्रंथों का प्रचार करना होता था, मानव समाज को भक्ति मार्ग का ज्ञान कराना उनकी ड्यूटी होती थी। तो ये दास उन नकली ब्राह्मणों के विषय में कह रहा है जो गुरु पद पर विराजमान थे, जिन्होंने परमात्मा को समझा नहीं, पूरे समाज को गुमराह कर दिया। मेरे गुरुदेव इस परंपरागत जाति ब्राह्मण से संबंध रखते थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे। मेरे दादा गुरुजी, यानी गुरुजी के गुरुजी, दिल्ली के अंदर छावला गांव है, छावला गांव के जाट थे, और उन्होंने घर त्याग दिया और एक संत की शरण ले ली। 15-16 वर्ष से ही वो घर से निकल गए थे। उस संत ने देखा कि ये होनहार बालक है, उसको काशी विद्यापीठ से शिक्षा करवा दी, वहां उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। वो चार विषय के आचार्य बन गए, चार विषय में आचार्य बन गए। वो अब अपनी जाति जाट ना कह करके वो कहते थे पंडित चिदानंद। चिदानंद जी नाम था हमारे दादा गुरु जी का। उनका आश्रम है खरखोदा, जिला सोनीपत, खरखोदा तहसील के पास एक गोपालपुर गांव है, वहां उनका आश्रम है। आश्रम पर लिखा हुआ पंडित चिदानंद जी आश्रम। तो वो जाट होते हुए, किसान होते हुए, परंपरागत जाति से वो जाट थे, लेकिन वो कर्म से फिर ब्राह्मण कहलाए, क्योंकि उन्होंने काशी विद्यापीठ से ये शिक्षा ग्रहण कर ली थी पंडिताई वाली, यानी अध्यात्म ज्ञान की। अपने आत्मा हमारा उद्देश्य किसी जाति विशेष से नहीं, बल्कि क्योंकि ये दास भी टीचर है, आध्यात्मिक टीचर है। और पहले के जितने भी गुरु थे, आचार्य थे, मैं ऋषि कुमार थे, ब्राह्मण थे, वो भी मार्गदर्शन करते थे, वो भी टीचर थे, आध्यात्मिक टीचर थे। उन अज्ञानी टीचरों ने पूरे समाज को आउट ऑफ सिलेबस ज्ञान करा दिया, और इन सिलेबसों की, यानी सिलेबस की, इन सब्जेक्ट्स की, सदग्रंथों की आड़ लेकर, सदग्रंथों का समर्थन करके, सदग्रंथों का रेफरेंस दे देकर कि ये शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है। विष्णु पुराण जब कोई सुनाता था, कहते थे विष्णु सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सारी सृष्टि के मालिक हैं, यही स्थिति करता है, यही संहार करता है, यही उत्पत्ति करता है, ये कुल मालिक है, अजर व अमर है, इनकी कोई माता पिता नहीं। जो शिव पुराण पढ़ाता था वो शिवजी को ही सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय बताते थे, ये नकली आचार्य। जिनको अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं, सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं, तो वो टीचर नहीं है, वो तो कति डुप्लीकेट नकली आदमी है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा जब आए थे, उन्होंने यथार्थ ज्ञान कराया था, लेकिन इन नकली गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने परमात्मा के उस ज्ञान को जनता तक जाने नहीं दिया, इतना जबरदस्त विरोध करा दिया कि परमात्मा कबीर देव जी को कई बार तो मारने की चेष्टा की गई, क्योंकि ज्ञान में वो परमात्मा के सामने नहीं टिक पाए थे, उनके छक्के छुड़ा देते दाता। कबीर परमेश्वर जी एक प्रश्न किया करते थे उन आचार्यों मंडलेश्वरों को से खड़े होकर के, कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। इस बात के ऊपर वो नकली गुरु आचार्य ब्राह्मण कहा करते कि ये झूठ बोलता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की आलोचना करता है, हमसे पूछ रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनका दादा कौन है। और कहा करते वो परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में बताया करते थे नकली ब्राह्मण, नकली गुरु ऋषि महर्षि ये अजर अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनका कोई माता पिता नहीं है। और परमात्मा कहा करते हैं कि साच कहूं तो जग ना माने, झूठ कई ना जाई हो, साच न पूरा पावते इन झूठों जगपति आई हो। के साच कहूं तो जग नहीं मानता और झूठ मैं कह नहीं सकता, मेरी सच्चाई को स्वीकार ना करके इन झूठों को, इन झूठे गुरुओं की बातों पर तुम विश्वास कर रहे हो। अपने आत्माओं उसमें लीला की दाता ने ये सारा ज्ञान लिपिबद्ध करवा दिया और परमेश्वर ने परमात्मा की महिमा कैसे बताई। परमेश्वर कबीर देव जी ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथी बताया करते थे। उन्होंने क्या बताया, धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, अब जग से कहिए वो राम नियारा। अब परमात्मा 600 वर्ष पहले बताया करते थे कबीर परमेश्वर जी, धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाण, अपनी प्यारी आत्मा को परमात्मा मिलते हैं, उनको ज्ञान देने के उद्देश्य से आते हैं, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म होते हैं, इसके साक्षी पवित्र चारों वेद हैं, आंखों देखे संत हैं जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से 21 तक 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र 1 में और भी सैकड़ों स्थानों पर यह प्रमाणित किया गया है कि वो परमेश्वर अपने तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में, सचखंड में, शाश्वत स्थान में, और वहां से गति करके आता है यहां इस मृत लोक में, और ये उस श्रेष्ठ आत्मा को मिलता है, पुण्यात्मा को मिलता है जो दृढ़ भक्त होता है, और उन महापुरुषों से मिलकर फिर उनको अपने यथार्थ ज्ञान देता है, आध्यात्मिक ज्ञान देता है। अब वही लीला मालिक ने 600 वर्ष पहले की थी, वो ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध है, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अभी तक तूने जो धार्मिक यज्ञ के बारे में जानकारी प्राप्त की 25 से लेकर 31 तक, इसमें सब अपने अपने साधना को अच्छा मानकर कर रहे हैं, पापनाशक मान रहे हैं, लेकिन उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में, उनके मुख से उच्चारित वाणी में, ब्रह्मणे मुखे, उसके अंदर बहुत विस्तार के साथ बहुत ही अच्छी तरह डिफाइन किया हुआ है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। आंख मीच कर किता कोई धन से, द्रव्य में यज्ञ माने धन से होने वाले धार्मिक अनुष्ठान, उनसे कहते वो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी ने कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतोष के पास जाकर समझ, वो परमात्म तत्व को जानने वाले तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा के बारे में यथार्थ ज्ञान कराएंगे। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है, तो ये वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है जिसने 600 वर्ष पहले परमात्मा ने स्वयं अपने मुख कमल से बोली थी, और धर्मदास साहिब जी जो उसकी प्यारी आत्मा थी परमेश्वर के, उन्होंने लिपिबद्ध की थी। और उससे मैं बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है और ये काल ज्योत निरंजन इनका पिता है। हे परमात्मा, आज रोना आता हमारे को, जिसमें परमात्मा आए थे ये दुष्ट निकम्मी आत्मा या आचार्य गुरु ना होते आज हम सभी सुखी होते, सतलोक चले जाते, आज इस दास को भी इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता जो परमात्मा करवा रहे हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों के बिना रह नहीं सकते। हम काल के जाल में पूर्ण रूप से फंस चुके हैं, हम इस गंदे स्थान पर रंगे जा चुके हैं। अब जैसे नीम का कीड़ा, नीम के वृक्ष पर रहने वाला कीड़ा उस कड़वी वस्तु को ही खा करके मस्त रहता है, और उसको उठाकर खांड की बोरी में डाल देना, बूरा की बोरी में, नीम के कीड़े ने ना वहां नहीं रुक गए, वो फिर उससे निकल जाए, क्योंकि उसने स्वभाव है कोई ना, वो तो रंगा पड़ा उस नीम के उस कड़वे पदार्थ को खाकर। उसको काफी समय तक उसमें रोका जाए खांड की बोरी में, तब भी एक महीने में जाकर उसको खाना कर, शायद धीरे धीरे उसमें आदि बनता है, नीम के ऊपर फिर नहीं जाएगा, जो उसको खांड की बोरी मिल जाएगी। तो पुण्यात्माओं, हम इस गंदे लोक में आ गए, यहां तो हम नीम खा रहे हैं और सतलोक में हम बूरा खाएंगे। ये यथार्थ ज्ञान है जो अब आपको बूरा बरसाई जा रही है, और पहले हम नीम खा रहे थे, वो अनुपासना कर रहे थे, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान ग्रहण था, शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे, और उसी को हम उसी में रंगे हुए थे। अपने आत्मा देख लो, इन और संता के टोल झुंड के झुंड गिने दिना में बन गए, और यहां बूरा खिलाई जाती है, उस नीम से उतर कर यहां नहीं आ पा रहे, लेकिन आएंगे कुछ दिन में, पुण्यात्मा अपने परमात्मा को पहचान लेंगे। और फिर पुण्यात्मा, भक्ति करना कोई कठिन काम नहीं, परमात्मा का पाना सबसे आसान काम है, सबसे आसान है। और डिफिकल्ट तो ये है कि हम परमात्मा पर विश्वास नहीं कर पा रहे कि हम जो साधना कर रहे ठीक है, या जो ज्ञान हमें बताया जा रहा है ये सही है, तो ये विश्वास जिसमें हो जाएगा फिर भक्ति की तो बात है को नहीं, और कोई मंत्र नहीं रहेगा, और कोई ज्ञान नहीं रहेगा, सभी फिर एक ही बोली बोला करेंगे, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। ये वृक्ष भी बोलन लग जाएंगे, थोड़े दिन में आपको दिखा दूंगा, और आवाज वैलियां गुंजा करेंगी, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। वास्तव में कबीर इज गॉड, परमात्मा कबीर जी है। अब ये सिद्ध हो जाएगा आपके समक्ष, आपकी आत्मा स्वीकार कर लेगी। 600 वर्ष पहले जिसको अशिक्षित कहे थे, ये अज्ञानी कि वो अविद्वान है, उसने अक्षर ज्ञान नहीं था, और अक्षर ज्ञान ना होते हुए भी उन्होंने वो ग्रंथों के गुण रहस्य बता दिए, तो वो भगवान थे। यदि उस समय परमात्मा शिक्षित होते तो आज ये कहने वाले मिल जाते कि वो पढ़ रहा था संस्कृत, उसकी किसी ने सुनी ना होगी, उसमें पढ़कर ग्रंथों में से उसने वाणी बना दी होगी, वो भी परमात्मा रास्ता साफ कर गए। कि आज ये भी नहीं कह सकते कि वो अक्षर ज्ञान था, और अक्षर ज्ञान ना होते वेदों के गुण रहस्य बता दिए तो भगवान थे। अब क्या बताते थे परमात्मा अपनी उस प्यारी आत्मा आदरणीय धर्मदास जी को, धर्मदास ये जग बोरा ना कोई न जाने पद निर्वाण। परमात्मा के एक सेंटेंस, एक चौपाई का एक ही लाइन पंक्ति, कितना कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि धर्मदास ये जग बोरा ना कोई ना जाने पद निर्वाण। किसी को भी मोक्ष मार्ग का पता नहीं, ये पूरा विश्व विचलित है धर्मदास। अपने आत्माओं ये बात कहना कि किसी को पता नहीं, अब परमात्मा कहते थे तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। तीन लोक ये अलग कहे जाते हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। और ये विष्णु का लोक, शिव का लोक, दुर्गा का लोक, धर्मराज का लोक, ब्रह्म लोक के अंदर भी चार लोक अलग से बना रखे इस काल में, ब्रह्म लोक में, और नीचे के एक पाताल को छोड़ के छह लोक और हैं। ये कुल मिलाकर 14 लोक अलग से कहे जाते हैं। तो परमात्मा कहा करते थे कि तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, यानी कोई भी तत्व ज्ञान से, सत्य ज्ञान से परिचित नहीं है।